आज है 6 जुलाई दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। अमेरिका में पुलिस की गोली में एक काले व्यक्ति की मौत। गुस्साए लोग उतरे सड़कों पर।
During the stop, shots were fired. One adult male was taken to the hospital. We have been informed.
क्या इसे नस्ली हमला कहा जा सकता है? चलेंगे वॉशिंगटन ब्रजेश उपाध्याय के पास। और सुकमा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को किया गया बर्खास्त, उठे कई सवाल।
कोई गिरफ्तार करके लाएंगे तो उसमें गवाही साक्षी नहीं ले ली जाएगी, तब तक मामला को फर्जी नहीं कह सकते। फर्जी है तभी तो लोग दोषमुक्त हो रहे हैं भाई। 100% लोगों को सजा नहीं हो पा रही है तो फर्जी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे?
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अमेरिका के मिनेसोटा में एक काले व्यक्ति की पुलिस गोलीबारी में हुई मौत से नाराज लोगों ने गवर्नर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस की गोली से मारे गए फिलांडो कौसल के साथ मौजूद रही उनकी गर्लफ्रेंड ने पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। इसमें वो अपनी कार के पहिए के पास दिख रहे हैं और उनके जिस्म से खून निकल रहा है। एक पुलिसकर्मी ने उनकी तरफ बंदूक तानी हुई है। ये 48 घंटे के दौरान इस तरह का दूसरा मामला है जो अमेरिका में सामने आया है। इसके पहले लुजियाना में एल्टन स्टर्लिंग की मौत हो गई थी। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक किशोरगंज में हुए चरमपंथी हमले में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 4 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में एक हमलावर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक किशोरगंज में ईद की नमाज के लिए करीब 2.5 लाख लोग जुटे थे, तभी चरमपंथियों ने पुलिस चेक पॉइंट पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बम, बंदूक और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि कम से कम एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसनुल हक इनू ने कहा है कि पुलिस पर हमला करने वाले चरमपंथी थे और उनका मकसद सरकार को हटाना है। उन्होंने कहा कि हमलावर अच्छे मुसलमान नहीं थे। उन्होंने कहा,
ये
बहुत दुख की बात है कि चरमपंथियों ने पुलिस टीम पर उस जगह हमला किया जहां ईद की नमाज के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। ये चरमपंथी हमला है। चरमपंथी इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ हैं और वो सरकार को हटाने के लिए अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये थे बांग्लादेश के सूचना मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोहियों के नियंत्रण वाले अलेप्पो शहर को बाकी दुनिया से जोड़ने वाले रास्ते के करीब जोरदार संघर्ष जारी है। खबरों के मुताबिक सरकारी सेना इस रास्ते से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। विद्रोही सेना को पीछे धकेलने की कोशिश में जुटे हैं। अगर सेना इस रास्ते को बाधित करने में कामयाब हो जाती है तो अलेप्पो को होने वाली आपूर्ति थम जाएगी और ये सरकार के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इटली में पुलिस ने नाइजीरिया के एक प्रवासी की पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कथित हमलावर एक दक्षिणपंथी चरमपंथी है। पुलिस के मुताबिक हमले में मारे गए एमनुअल चिडी मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ फेरमो शहर में टहल रहे थे, तभी उन पर नस्लभेदी हमला हुआ। इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। इटली के प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा करते हुए लोगों से हिंसा, नस्लभेद और नफरत के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अमेरिका में पुलिस की गोली में मारे गए काले व्यक्ति की घटना सामने आने के बाद वहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये पिछले 48 घंटों में दूसरी ऐसी घटना सामने आई है। इस घटना से गुस्साए लोगों का समूह मिनेसोटा के गवर्नर के घर के बाहर जमा हो गया है। इस काले व्यक्ति का नाम फिलांडो कास्टिल है और इस घटनाक्रम का पूरा वीडियो उनकी गर्लफ्रेंड ने बनाया था। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं तृप्ति श्रीवास्तव।
अमरीकी मूल के काले नागरिक 32 साल के फिनलैंडो कैस्टील अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार से जा रहे थे। फेल्कॉन हाइट्स पर पुलिस ने उन्हें गाड़ी की लाइट टूटी होने की वजह से रोका। उनके साथ बैठी गर्लफ्रेंड लेविश रेनॉल्ड्स बताती हैं कि जब वो अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर्स से लेने के लिए मुड़े तो पुलिस ने उन पर 4 गोलियां चला दी। रेनॉल्ड्स ने अपने मोबाइल से गोली चलने के बाद का वीडियो भी बनाया जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में कैस्टील अपनी सीट पर खून से लथपथ सर झुकाए दिख रहे हैं और पुलिस रेनॉल्ड्स पर बंदूक ताने उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कह रही है। इस वीडियो में रेनॉल्ड्स कह रही है, मेरे साथ रहो, हमें लाइट टूटी होने की वजह से रोका गया था। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया। उसके पास लाइसेंस था। वो जेब से बाहर रखे पर्स से अपना परिचय पत्र निकालने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस को बताने ही वाला था कि उसके पास एक लाइसेंसी बंदूक थी, लेकिन तब वो निहत्था था। आपने उसे अपना परिचय पत्र दिखाने को कहा था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा था। अब ये मत कहना कि उसकी मौत हो गई है, भगवान के लिए ये मत कहना कि उसकी मौत हो गई है। इस वीडियो में वो पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने कैस्टील पर गोलियां चलाईं। कार में रेनॉल्ड्स की बेटी भी मौजूद थी। कैस्टील एक स्कूल में कैफेटेरिया में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे। इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारी जॉन मैंगसिथ कहते हैं,
During the stop, shots were fired. One adult male was taken to the hospital.
रोकने के बाद गोलियां चलाई गईं, एक वयस्क को अस्पताल लाया गया। हमने उसकी मौत की जानकारी दे दी है। घटना स्थल से एक बंदूक बरामद हुई है। अपराध ब्यूरो आगे की जानकारी के लिए जांच कर रहा है। घटना में शामिल पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है।
अस्पताल में जहां कैस्टील को मृत घोषित किया गया, वहां उनकी मां भी मौजूद थी। स्थानीय टीवी पत्रकार जेनिफर मेल्ले ने कैस्टील की मां से बात की। जेनिफर ने बताया,
उन्होंने कहा वो कानून के हिसाब से ही जिया और कानून के हाथों ही उसकी मौत हो गई। वो बोली कि मैंने उसकी अच्छी परवरिश की थी।
इस घटना से एक दिन पहले ही यानी मंगलवार को अमेरिका के लुसियाना में काले अमेरिकी नागरिक एल्टन स्टेलिंग की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो 37 साल के थे।
हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ चुके हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, आपने तृप्ति श्रीवास्तव का ब्यौरा सुना। वो बता रही थी कि 48 घंटों में यहाँ ये दूसरी बड़ी घटना है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ब्लैक लाइव्स मैटर। क्या माहौल है वहाँ पर?
जी, जैसा कि आपने कहा, 48 घंटों के अंदर अगर दो इस तरह के वारदात हो जाएं तो जाहिर है काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। कई जगह पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग गुस्से में हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से फर्गसन या बाल्टीमोर में पिछले साल लूटपाट और दंगों का माहौल था, वो नहीं नज़र आया है। लुइजियाना में डेमोक्रेटिक गवर्नर ने अमरीकी न्याय मंत्रालय से गुजारिश की है कि वो इस मामले को नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले की तरह जाँच इसकी शुरू करें, और पुलिस की अपनी जांच शुरू हो चुकी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अगर इतने अमरीकियों को लगे कि उनकी जिंदगी उनके रंग की वजह से मायने नहीं रखती, तो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, एक बहुत बड़ा दोष है।
जी, हिलरी क्लिंटन ने भी टिप्पणी की है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 में पुलिस कार्रवाई में 1,152 लोगों की मौत हुई थी और इनमें से 30% पीड़ित जो थे वो काले थे। तो क्या इसे नस्लीय मामला माना जा सकता है?
देखें, अगर सतही तौर पर आप देखें तो इस देश के राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी मूल के हैं यानी काले हैं, न्याय मंत्रालय की सर्वोच्च अधिकारी उसी समुदाय से हैं। ऐसे में लगेगा कि नस्लवाद का तो कहीं पर सवाल ही नहीं उठना चाहिए, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि देश के अंदर एक अंदरूनी पूर्वाग्रह अभी भी है और काफ़ी गहरी है। अगर संदिग्ध अवस्था में पुलिस एक काले व्यक्ति को देखती है और एक गोरे व्यक्ति को, तो दोनों के साथ बर्ताव का रवैया काफ़ी हद तक अलग होता है। और न्याय मंत्रालय ने कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें एक इम्प्लिसिट बायस का जिक्र किया गया था पूरे समाज में, जिसे काले व्यक्ति को हमेशा अपराध से जोड़कर देखा जाता है। दूसरा बड़ा मामला है प्रशिक्षण का। पुलिस की ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा है यहाँ खुद की रक्षा, तो उसमें अगर एक काले व्यक्ति के पास हथियार का अंदेशा भी होता है तो पुलिस गोली चला देती है। माना जा रहा है कि प्रशिक्षण में डी एस्केलेट करने यानी स्थिति को बातचीत से या दूसरे तरीकों से काबू में करने पर ज्यादा जोर नहीं है, और साथ ही यहां क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। पुलिस की सोच में तब्दीली लाने पर खासी बहस हो रही है और एक पूरा आंदोलन ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से यहां चल रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद इस तरह की घटनाएं जब बार बार होती हैं तो जाहिर है सवाल उठते हैं और उंगलियां उठती हैं नस्लवाद की तरफ, नस्ल परस्ती की तरफ।
जी ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। बात करते हैं चिलकॉट रिपोर्ट की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इस बात को माना है कि उन्हें इराक में हमले को लेकर आई खुफिया जानकारी को परखना चाहिए था, लेकिन उनका कहना था कि वे मानते हैं कि सद्दाम हुसैन को हटाने का कदम सही था। इराक में हुए हमले में ब्रिटेन की भूमिका पर आई सर जॉन चिलकॉट की रिपोर्ट आने के बाद बीबीसी से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। और क्या क्या कहा है, पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं लंदन से पवन सिंह अतुल।
ये वो फैसला था जिसकी वजह से 179 ब्रितानी सैनिक मारे गए। अब चिलकॉट रिपोर्ट में पाया गया है कि इन सभी लोगों को लड़ाई में झोंकने से पहले की गई तैयारी नाकाफी थी। रिपोर्ट कहती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के सारे रास्ते आजमाए बिना ही ब्रिटेन को लड़ाई में धकेल दिया। इराक युद्ध में अपना भाई खोने वाली सैरा ओकोनर जैसे गमजदा रिश्तेदारों के लिए ये सुनना काफी भावुक लम्हा था।
मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मुझे बताया गया था कि मेरा भाई मारा गया है और इस दुनिया में एक आतंकवादी है जिसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए और उसका नाम है टोनी ब्लेयर।
रिपोर्ट से पता चलता है कि टोनी ब्लेयर ने सद्दाम हुसैन से होने वाले खतरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और ये भी कि इराक पर चढ़ाई की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सटीक नहीं थी। युद्ध में मारे गए लोगों के रिश्तेदार अब कानूनी कार्यवाही की बात कर रहे हैं, लेकिन टोनी ब्लेयर अब भी युद्ध में जाने के फैसले पर अडिग हैं। ब्लेयर ने आज BBC को बताया कि उनकी वजह से ही इस हमले के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया था।
कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक मैं ये ना कह दूं कि मेरा लड़ाई में जाने का फैसला गलत था, मैं ढंग से माफी नहीं मांग रहा। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन मैं अब भी ये नहीं मानता कि वो लड़ाई व्यर्थ थी और वो जाने जाया ही गईं।
2003 की इराक की चढ़ाई की अगुवाई अमरीका ने की थी और ब्रिटेन भी इसमें शामिल हुआ था। उस फैसले से जुड़ी कई हस्तियों का कहना है कि रिपोर्ट ब्रिटेन को युद्ध में धकेलने के लिए डाले गए अमरीकी दबाव को नजरअंदाज करती है। उस समय संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के राजदूत रहे सर जेरेमी ग्रीनस्टॉक कहते हैं,
अमरीकी इसके बारे में सही नहीं बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता था कि सद्दाम हुसैन को बिना लड़ाई के ही हटाया जा सकता है और थोड़े समय के लिए जॉर्ज बुश उनसे सहमत भी थे, लेकिन बुश प्रशासन के कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि बिना लड़ाई के समाधान खोजना वक्त की बर्बादी है।
उस जंग के दौरान और उसके बाद इराक में 1.5 लाख मौतें हुई हैं। 2003 में जब पश्चिमी सेनाओं ने सद्दाम हुसैन का पुतला गिराया था तो खुद इराकियों ने उनका हाथ बंटाया था। उन्हें लगा था कि ये उनके लिए आज़ादी की सुबह है, लेकिन आज बगदाद के निवासी हदीम अल जबूरी को लगता है कि वो सवेरा पहले से अधिक घने और काले बादल लेकर आया है।
आज हमारे यहाँ 1000 सद्दाम हुसैन पैदा हो गए हैं। अगर टोनी ब्लेयर मेरे सामने आ जाए तो उनके मुँह पर थूक कर कहूँगा कि तुम मुजरिम हो।
हाल ही में बगदाद में हुए आत्मघाती हमले में 250 लोग मारे गए थे। ताज़ा हमला याद दिलाता है कि लड़ाई शुरू होने के 13 साल बाद भी इराक के हालात डामाडोल हैं और वहां के लोग आज तक उस ऐतिहासिक फैसले का खामियाजा भुगत रहे हैं। पवन सिंह अतुल, BBC लंदन।
ब्रजेश जी, आपको कार्यक्रम में फिर से शामिल करना चाहेंगे। आपने पवन सिंह अतुल की रिपोर्ट सुनी। वहाँ पर ब्रिटेन में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इराक हमले के बाद जो दिक्कतें आईं उसके लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो अमेरिका में अब यहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है?
देखिए, यहाँ पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने एक तरह से इराक पर हमला किया था, उनके प्रवक्ता की तरफ से कल बयान आया कि बुश को रिपोर्ट पढ़ने का मौका नहीं मिला है। कल उनका 70वां जन्मदिन था, लेकिन उनका मानना है कि खुफिया तंत्र की असफलता और दूसरी गलतियां जिन्हें बुश पहले ही कबूल कर चुके हैं, इन सब के बावजूद बुश की नज़र में सद्दाम हुसैन के न होने से दुनिया एक बेहतर जगह है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उस जंग में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में ब्रिटेन से बेहतर और मजबूत कोई दूसरा सहयोगी नहीं था। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट का कहना था कि राष्ट्रपति ओबामा को इराक युद्ध के परिणामों से पूरे 8 साल तक लगभग जूझना पड़ा है और आने वाले राष्ट्रपतियों को भी उसका सामना करना पड़ेगा। और साथ ही जॉश अर्नेस्ट का ये भी कहना था कि अमरीका को भी उस गलती से सबक लेना चाहिए। विदेश विभाग ने इस पर सीधे तौर से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनका यह कहना था कि अमेरिका का पूरा ध्यान इस वक्त इराक और सीरिया में शांति कायम करने की तरफ है और वहां राजनीतिक सुधार हो इराक में, खास तौर से उसकी कोशिशों की तरफ है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। थे वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय।
जब जीवन बचाने वाला डॉक्टर ही मौत का कारण बन जाए।
मेरे होश उड़ गए जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी हमने ये निकाल दिए हैं, दोनों ओवरीज निकाल दिए हैं और यूट्रस भी निकाल दिया है।
जब डॉक्टर ही आपकी तबाही की वजह बन जाए।
I would never advise anybody to come to India. The hospital is not responding, which is the height of inhumanity.
जब जिंदगी न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई बन जाए।
मैंने अपना सारा प्रोफेशन ही छोड़ दिया है, तो मेरी तो पूरी लाइफ इसी तरह से बीत गई है, तो ऐसा जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं।
जीवन से खेलते डॉक्टरों से कब मांगा जाएगा जवाब? मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
अभी जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर लोगों को सस्ता, तर्कसंगत और कानूनी बढ़िया इलाज देने की जिम्मेवारी है, उनका झुकाव डॉक्टरों द्वारा बनाए जा रहे पैसे की तरफ है।
क्या सफाई देते हैं डॉक्टर?
कहां करप्शन नहीं है, ये मैं करप्शन डिफेंड नहीं कर रहा हूं डॉक्टर, पर है तो एक्शन लो उनके खिलाफ, एक्शन बड़ा सिंपल है।
और क्या आपके भी हैं कोई अधिकार? मैं विनीत खरे बीबीसी हिंदी रेडियो पर पेश करूंगा खास रिपोर्टें 11 जुलाई से दिन भर और नमस्कार भारत में।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाकर गवाल इन दिनों सुर्खियों में हैं। प्रभाकर गवाल को इस साल अप्रैल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित का हवाला देकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, जबकि गवाल की छवि एक ऐसे जज की थी जिनके फैसले जनहित में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते थे। कड़क और ईमानदार छवि के कारण ही सरकार ने उन्हें सीबीआई का विशेष जज नियुक्त किया था। क्या है पूरा मामला जानने के लिए सीधा चलते हैं आलोक पुतुल के पास। आलोक जी, क्या कहना है, क्या मामला है ये पूरा?
छत्तीसगढ़ में पिछड़ी जाति के प्रभाकर गवाल 2006 में न्यायिक सेवा के लिए चुने गए और उनकी छवि ऐसे जजों में शुमार रही है जिनके फैसले बेहद दमदार रहे हैं। 2014 में बिलासपुर में जज रहते हुए उन्होंने जमीन घोटाले के एक ऐसे मामले में लोगों को सजा सुनाई थी जिसमें राज्य के कई कद्दावर मंत्री शामिल थे। उन्होंने रायपुर में सीबीआई का विशेष जज रहते हुए एक पुलिस अधीक्षक के मामले में पुलिस के बड़े अधिकारियों पर संदेह जताया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में हुए घोटाले में एक पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की थी। और कुल मिला के ये कि सुकमा के ये जो जज हैं प्रभाकर गवाल, वो अपने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए राज्य में जाने जाते थे।
जी, बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आलोक पुतुल आपका। और जैसे कि आलोक बता रहे थे कि अभी ये जो बर्खास्तगी हुई है, उनसे जो बातचीत हुई थी आलोक से, उनका कहना था कि उस बर्खास्तगी मामले को लेकर जो गवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी कर रहे हैं। आलोक ने मुख्य दंडाधिकारी प्रभाकर गवाल से उनकी बर्खास्तगी का कारण पूछा।
बर्खास्तगी तो कोई कारण ही नहीं है, अवैध आधार पर किया गया है, जोर जबरदस्ती डिसमिस करने का कोई आधार ही नहीं है। सुकमा में निर्दोष लोगों को भी नक्सली बता के गिरफ्तार करके ला रहे थे, तो उसमें शीघ्रता से विचारण कर रहा था, जो लोगों को अवैध रूप से जेल निरुद्ध होना नहीं पड़ रहा था। ये तमाम कारण रहे हैं, इसे लेकर नेताओं पुलिस में दुश्मनी होने लगी और षड्यंत्र पूर्वक डिसमिस किया गया है।
सुकमा में काम करते हुए आपके अनुभव कैसे थे, खासतौर पर माओवादी मामलों की स्थितियाँ कैसी हैं?
नक्सल समस्या के नाम से कार्यवाही हमारे शासन स्तर पर और पुलिस के द्वारा की जा रही है, ये टोटली गलत है। गलत व्यक्तियों को गिरफ्तारी कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को किसी भी घटना में इन्वॉल्व कर रहे हैं। वास्तव में घटना घटती है, हमारे फोर्स पर जो बंदूकधारी जंगल में छुपे हुए हैं वो हमला करते हैं, लेकिन उसमें जो शेष गिरफ्तारी होती है वो टोटल फर्जी है। बस्तर के जितने भी नक्सलाइट प्रकरण हैं उसमें लगभग 100% दोष मुक्ति आ रहे हैं।
आपकी अदालत में भी माओवादियों के नाम पर एक साथ हजार लोगों की गिरफ्तारी का मुद्दा सामने आया था, क्या है ये मामला ग्वाल साहब?
वो पुलिस वाले 22 दिसंबर 2015 को अलग अलग मार्केट से लोगों को उठा के ले आए थे, लगभग 950-1000 था, और उनको धीरे धीरे गिरफ्तारी शो कर रहे थे, तो 30 जने को गिरफ्तारी शो कर किए थे, तो उसमें 22 दिसंबर को उन्होंने आवेदन दिया कि हमको 55 लोगों के एक ही मार्केट से बुला के लाए हैं बोल के, तो उसको मैं पुलिस मुख्यालय को लिखा था। तो फिर अगले दिन एडिशनल एसपी जो संतोष जी मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे आके बताया कि लगभग 950 लोगों को गिरफ्तार करके ले आए हैं, तो कैसे करें बोल के, तो आप जो करना है कीजिए भाई, तो मैं तो न्यायालय में कार्रवाई करूंगा बोला। न्यायालय में आप जैसा दस्तावेज पेश करोगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी, मैं क्या करूंगा अभी थोड़ी बताऊंगा बोला। तो बाकी लोगों को और गिरफ्तारी शो नहीं किए, खाली वो 30 लोगों को ही गिरफ्तारी शो किए थे।
बस्तर में पुलिस लगातार माओवादियों की गिरफ्तारी का दावा करती है, उस इलाके में काम करते हुए आपके अनुभव कैसे रहे हैं?
जो किसी वारदात में शामिल नहीं रहते हैं वही लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, किसी को भी बुला के उठा के ले आ रहे हैं।
लेकिन आत्मसमर्पण भी तो हो रहा है और मुठभेड़ की खबरें भी तो खूब आ रही हैं।
वो टोटली मुझे तो फर्जी आत्मसमर्पण लगता है, उतना समर्पण करेंगे तो फिर आदमी कहाँ से बचेंगे कि नक्सली बनेंगे। ये सब अपना एक प्रोपेगेंडा है, मामला को हाईलाइट जिंदा रखने का एक अवैध षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। वहाँ के जन स्थानीय निवासियों को मारकर संसाधन पर कब्जा करना चाहते हैं, मुठभेड़ भी तो प्रायोजित लगता है।
क्या आपको काम करते हुए ऐसा लगा कि पुलिस के दावे और उसकी हकीकत अलग अलग है?
नहीं तो हर केस में फर्जी गिरफ्तारी है ना भाई। मेरे को कोई मार देगा तो मेरा भतीजा को थोड़ी गिरफ्तार करोगे, ऐसे 1000 लोग मार जा रहे हैं तो गिरफ्तार करो ना भाई, जो उसका मास्टरमाइंड है गिरफ्तार करो, जो वास्तव में गोली चला जाए उसको गिरफ्तार करो। हम कहाँ बोलते हैं कि नहीं मरा है, वारदात नहीं हुआ है, और घर बैठे किसी भी को भी पकड़ के ले आओगे, वाहवाही दिखाओगे।
आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके कोर्ट में आने वाले अधिकांश मामले फर्जी होते थे?
पूरा टोटल मामला फर्जी है, लेकिन हम लोग फर्जी नहीं कह सकते ना जब तक एक प्रक्रिया नहीं कहा जाएगी। आम आदमी कह सकता है, जब तक कोई केस गिरफ्तार करके लाएंगे तो उसमें गवाही साक्षी नहीं ले ली जाएगी, तब तक मामला को फर्जी नहीं कह सकते। फर्जी है तभी तो लोग दोषमुक्त हो रहे हैं भाई, 100% लोगों को सज़ा नहीं हो पा रही है। तो फर्जी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? और थोड़ा भी मजिस्ट्रेट वहाँ के न्यायाधीश लोग अलर्ट नहीं रहेंगे तो निर्दोष लोगों को भी सज़ा होना शुरू हो जाएगा।
आप बार बार कहते हैं कि पुलिस, राजनेता और न्यायपालिका में शामिल कुछ लोगों से आपको खतरा है।
खतरा तो लगता है, लेकिन खतरे के डर से तो जीना नहीं छोड़ेंगे ना भाई। मैं तो नामजद रिपोर्ट भी लिखा हूँ कि मेरे या मेरे परिवार के विरुद्ध कुछ भी होगा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे बोल के, और इन्हीं लोगों के इशारे के ही बिना मेरे को किसी प्रकार की नहीं होगा। 2-3 जस्टिस लोगों का भी नाम है उसमें। मैं घर परिवार में भी सबको आगाह कर दिया हूँ, अब थोड़ा अलर्ट रहेंगे बोल के, खाने पीने में, आने जाने में, ऐसे सब तरफ अलर्ट रहने के लिए बोला हूँ। झिरम घाटी में कांग्रेस नेताओं को मार दिए, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ, कौन मारा क्या मारा आज तक ट्रेस नहीं हुआ, बार बार विवेचना कार्यवाही बदलने की समाचार छपता है, वो तो टोटल राजनीतिक हत्या है ना भाई। तो उन लोगों को इतने बड़े बड़े नेताओं को मार दिए तो मैं कौन सी बड़ी चीज़ हूँ? मैं तो नेताओं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज़्यादा आदेश पारित किया हूँ ना भाई। हालांकि मेरा आदेश विधि रूप से सही है, लेकिन वो लोग उसको अन्यथा ले रहे हैं, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है।
बर्खास्तगी के बाद राज्य सरकार से नाराज मुख्य दंडाधिकारी प्रभाकर अग्रवाल, उनसे बात कर रहे थे आलोक पुतुल। और अब समय है आपकी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ फिर से हैं
स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी जिनके पास आज सिर्फ और सिर्फ ईमेल है, हमारे पास आज चिट्ठियां नहीं है क्योंकि आज ईद है और पोस्ट ऑफिस बंद है। तो आप बताइए कि कहाँ से आप शुरुआत करना चाहती हैं?
मैं इलाहाबाद से आए एक ईमेल से शुरुआत करूंगी। अनिल शुक्ला ने हमें ईमेल लिखकर भेजा है और अंग्रेजी में लिखकर भेजा है, लेकिन इन्होंने
सबसे पहले इसी पे एतराज कर दें शुक्ला साहब कि आप हिंदी के कार्यक्रम सुनते हैं और हिंदी में कभी आप चिट्ठी नहीं लिखते, ये हमारी तरफ से आपसे शिकायत है। मैं ये समझ सकता हूँ कि हो सकता है हिंदी फॉन्ट की तकलीफ हो, आपके पास ना हो, लेकिन अपनी बात अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं। गूगल ट्रांसलिट्रेशन वाला वो टूल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें आपकी काबिलियत पे कतई बहुत भरोसा है और कतई शक नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा कि आप अपनी बेबाक राय हिंदी में लिखें हम तक, तो बहुत हमको खुशी होगी और आसान भी होगा। लेकिन ये राय क्या जाहिर कर रहे हैं ये भी तो बता दें इस बार।
जी, इन्होंने लिखा है कि ये खुद पेशे से डॉक्टर हैं और बीबीसी पर मेडिकल सीरीज की घोषणा सुनकर इन्हें लग रहा है कि आप लोग डॉक्टरों को हर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारी डालेंगे यानी इस सीरीज के दौरान।
अभी सीरीज शुरू नहीं हुई है, लेकिन शुक्ला साहब ने कह दिया प्रोमो सुन के यानी उसके ट्रेल सुन के कि डॉक्टरों पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। अरे साहब थोड़ा इंतजार तो कीजिए।
कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप डॉक्टरों के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र करेंगे जिनमें काम के लंबे घंटे, घटिया ट्रेनिंग और बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है। साथ ही ये ध्यान रखें कि हर गलती नेग्लिजेंस नहीं है, क्योंकि ये गणित जैसा कोई सुनिश्चित विषय या विज्ञान नहीं है। साथ ही इन्होंने एक बहुत अहम बात लिखी है राजेश जी, कि जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी जज के डिसीजन को ओवर रूल करता है या बदलता है, तो जो लोअर कोर्ट का जज है उसके खिलाफ नेग्लिजेंस का मामला तो दर्ज नहीं किया जाता।
हाँ, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज पड़ा होता है और उसकी दाहिनी किडनी या गुर्दा बदलने के बजाय बायां बदल दिया जाता है, या दाहिनी आंख दुरुस्त करने के बजाय बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया जाता है, जाहिर है वो तो नेग्लिजेंस के ही वर्ग में आएंगी। लेकिन ये अभी बहस का विषय नहीं है क्योंकि अभी तो सीरीज शुरू नहीं हुई है, विनीत खरे उस पर काम कर रहे हैं। मैं अपने तमाम श्रोताओं को बता दूं और अनिल शुक्ला साहब आपको भी, कि शनिवार को इसी विषय पर जब आप सीरीज सुनेंगे उसके बाद इंडिया बोल कार्यक्रम भी होगा, उसमें डॉक्टर्स को और तमाम लोगों को ये मौका होगा कि अपनी बात भी आप रखें। तो अगर आप उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहें तो जरूर अपनी बात रखने के लिए आप स्वतंत्र होंगे।
विनीत कुमार ने ईमेल भेजा है और इनका कहना है कि शिकायत इन्होंने भी की है कि आप लोगों ने लंबे समय से बीबीसी हिंदी से कार्यक्रम डाउनलोड करने का लिंक हटा दिया है, ऐसा क्यों किया है?
इन्होंने अपना शहर का नाम या गांव का नाम नहीं लिखा है। मैं ईमेल लिखने वाले तमाम श्रोताओं से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने चिट्ठी के साथ, मेल के साथ अपने जहां पर रहते हैं, ज़िला, गांव या शहर, उसका नाम भी लिखा करें तो हम आपको बता सकते हैं कि किस शहर या गांव से चिट्ठी आई है। रही बात डाउनलोड करने की, तो जो डाउनलोड का टूल था हमारी वेबसाइट में, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी शिकायतें हमें मिल रही थी, इस वजह से हमने उसको हटाया है, लेकिन उस पर अभी काम हो रहा है। जैसे ही वो दुरुस्त होगा आप फिर से कार्यक्रम डाउनलोड कर पाएंगे।
आगे इन्होंने निखिल रंजन की दुनिया जहां की तारीफ की है जो इन्होंने कराची शहर पर किया था। विनीत खरे की रिपोर्ट्स का इनको इंतजार है, ये कह रहे हैं संडे दिन भर में कैलाश खेर से जो बातचीत थी उसकी तारीफ की है, और वसदुल्ला खान की भी पाकिस्तान डायरी की इन्होंने तारीफ की है। रेहान फजल हर शुक्रवार रियो ओलंपिक्स लेकर आते हैं, उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद विनीत कुमार जी, आपको हमारे तमाम कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, और विनीत खरे जिस मेडिकल सीरीज पे काम कर रहे हैं वो तो खैर आएगा ही, लेकिन उसके साथ श्रोताओं को ये भी बता दें कि नितिन श्रीवास्तव अभी अमेठी और रायबरेली वाले इलाके से लौटे हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे पदार्पण करेंगी और उनका क्या होगा, इस पर भी आने वाले दिनों में आप नितिन श्रीवास्तव से रिपोर्टें सुनेंगे।
और आपने राजनीतिक लड़ाई की बात की तो डॉक्टर हेमंत कुमार का ईमेल है भागलपुर से, इन्होंने लिखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार की अजीब लड़ाई चल रही है जिसका उद्देश्य सिर्फ एक दूसरे को राजनीतिक पटखनी देना है। इसमें ये कितना कामयाब होते हैं ये मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में इन दोनों पार्टियों को जनता से पटखनी मिलेगी। साथ ही इन्होंने एक और खबर पर अपनी टिप्पणी की है, महिलाओं में पुरुषों से कहीं ज्यादा सहन करने की शक्ति है, उसका जवाब ही नहीं है, ये बात उन्हें ही समझ आ सकती है जिन्हें हमेशा सिखाने की नहीं बल्कि सीखने की आदत भी हो।
जी, डॉक्टर हेमंत कुमार ने ये ईमेल ग्राम पोस्ट गिरिडीह जिला भागलपुर बिहार से लिखी है। डॉक्टर साहब, बाकी आपकी राय तो हमारे सरमाथे है ही, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि अगर हमारे कार्यक्रमों पर आप टिप्पणी करेंगे, कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, चाहे आलोचना करें या उसकी तारीफ करें, वो मुझे लगता है ज़्यादा विचारणीय रहेगा, ज़्यादा मौजूं हस्बेहाल जिसे उर्दू में कहते हैं। फिलहाल तो समय हमारा समाप्त हुआ, इसलिए मैं चलते चलते आपको पता बता देता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk। तो लें इजाजत, नमस्कार।
और अब समय है खेल की खबरों का, और बात की जाए विंबलडन की तो उसके क्वार्टर फाइनल में सानिया मिर्जा हार गई है, तो भारत के लिए एक उम्मीद भी जाती रही है। हमारे साथ लाइव स्टूडियो में आदेश कुमार गुप्ता। आदेश, क्या जानकारी है?
जी हाँ बिल्कुल, अगर महिला युगल वर्ग के मुकाबलों की बात की जाए तो शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी के रूप में खेल रही भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस, पांचवीं वरीयता हासिल जोड़ी हंगरी की टीमें बाबोस और कजाकिस्तान की यारो शलावा शेवदुआ से 6-2, 6-4 से हारकर बाहर हो गई, और ये बहुत बड़ा झटका है जोड़ी के लिए क्योंकि इस साल उनका प्रदर्शन कुछ इतना अच्छा नहीं रहा जितना पिछले साल रहा था, और ये जोड़ी तो पिछली बार की चैंपियन जोड़ी थी। लेकिन भारत की उम्मीदों के रूप में अभी लिएंडर पेस बचे हुए हैं और आज वो मिश्रित युगल वर्ग में मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर फिनलैंड के हेनरी मॉन्टनेन और अमेरिका की इनर वाटसन का सामना करेंगे। और महिला युगल वर्ग के एकल वर्ग के पहले सेमीफाइनल की बात की जाए तो शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने गैर वरीयता हासिल रूस की इलीना वेस्निना को बेहद आसानी से 6-2, 6-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में आज ही उनकी बहन आठवीं वरीयता हासिल वीनस विलियम्स चौथी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर का सामना करेगी। और उधर आज यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी और फ्रांस आमने सामने होंगे।
जी, खेल समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के मिनेसोटा में एक काले व्यक्ति की पुलिस गोलीबारी में हुई मौत से नाराज लोगों ने गवर्नर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की पुलिस के मुताबिक किशोरगंज में हुए चरमपंथी हमले में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में एक हमलावर भी शामिल है। सीरिया से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोहियों के नियंत्रण वाले अलेप्पो शहर को बाकी दुनिया से जोड़ने वाले रास्ते के करीब जोरदार संघर्ष जारी है। इटली ने में पुलिस ने नाइजीरिया के एक प्रवासी की पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।